भजन संहिता 106, भजन 106 पद 1 से लेकर 5 तक। या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुण अनुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। भजन 105 में वो इसराइलियों के इतिहास को दोहराता है, परंतु उसका ध्यान का केंद्र परमेश्वर पर है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और वो उन्हें उस देश में लाएगा। भजन 106 एक बार फिर उनके इतिहास को दोहराता है, परंतु यहां वो उन लोगों को प्रमुखता देता है। जब आप उनके इतिहास में परमेश्वर पर प्रमुख स्थान देखते हैं और उसी इतिहास में मनुष्यों पर प्रमुख स्थान देखते हैं, तो कितना बड़ा फर्क दिखाई देता है। परमेश्वर पर केंद्रित उनके इतिहास को देखते हैं तो लोगों के लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता दिखाई देती है, और जब आप मनुष्यों पर केंद्रित इतिहास को देखते हैं तब मनुष्य की अनिष्ठा को देखते हैं। यहां दाऊद मनुष्यों के स्वभाव को देखते हुए इतिहास पर दृष्टि डाल रहा है। भजन 106 पद 6, हमने तो अपने पुरखाओं की नाई पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है, अपने पुरखाओं की तरह हम अपराधी हैं, हमने पाप किया है, हमने दुष्टता की है, हमने कुटिलता की है। भजन 106 पद 7, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। वो अध्याय 105 में गिनाए गए परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों अर्थात महामारियों के संदर्भ में कहता है कि इन सब के बाद भी इसराइलियों ने उसको नहीं पहचाना। भजन 106 पद 7 में आगे लिखा है, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा, उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। परमेश्वर उन्हें बंधुआई से निकाल लाया, परंतु जब एक दिन की यात्रा बाकी रह गई थी वे कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, तू क्यों हमें यहां ले आया, क्या मारने के लिए, हम वहां इतने दुखी नहीं थे। अभी दो ही दिन हुए थे कि वे लोग कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने लगे। वे लोग ऐसा ही करते रहे। भजन 106 पद 8 से लेकर 15 तक, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया जिससे वो अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वो सूख गया, और वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उभारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। वे शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की लालसा में परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर ने उनकी जरूरतें पूरी की, परंतु इससे उनकी आत्मा सुस्त हो गई। बहुत बार हमारे साथ भी यही होता है। जब हमारी आंखें भौतिक चीजों पर लग जाती है और हम भौतिक संसार में जीने लगते हैं, ये वही जीवन है जिसे हम वास्तव में चाहते और ढूंढते थे, वही चीजें जो भौतिक संसार में होती है। परमेश्वर हमें वो सब दे सकता है, परंतु दुर्भाग्यवश ये मेरी आत्मा में उदासी लाता है। इन सब के कारण मैं आत्मिक तौर पर दुख उठाता हूं। एक धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, क्योंकि जो धनी है वे ऐसी परीक्षा में डूब जाते हैं। ये सब बातें मनुष्य की आत्मा को विनाश में ले जाती है। इसलिए इसराइल की संतान की मांग परमेश्वर ने पूरी कर दी। कभी कभी ये आत्मिक तौर पर हमारे लिए बहुत बुरा होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। उसने उनकी मांग पूरी कर दी, लेकिन उनकी आत्मा सुस्त हो गई। भजन 106 पद 16 से लेकर 32 तक। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में ढा किया। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबिराम के झुंड को ग्रस लिया, और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। उन्होंने होरब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत किया। इस तरह उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्यकर्म और लाल समुंदर के तीर पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोकिम के साथ में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जल जलाहट को ठंडा करें, कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति न की। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनको जंगल में नाश करूंगा और इनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूंगा और देश देश में तितर बितर करूंगा। वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। इस तरह उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। तब पिन्हास ने उठकर न्याय दंड दिया, जिससे मरी थम गई, और ये उसके लिए लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई। यहां एक रोचक कहानी है, क्यों मूसा प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं जा सका। इसका कारण ये था कि परमेश्वर उन्हें आज्ञा पालन का महत्व सिखाना चाहता था। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? आज्ञाकारिता। मूसा लोगों के नजर में परमेश्वर का आज्ञाकारी था। परमेश्वर ने कहा, जाओ और जाकर चट्टान से कहो, वो तुम्हें पानी देगी। मूसा ने अपनी लाठी ली और उसने चट्टान को मारा। क्या मैं इस चट्टान को मारूं तब ये पानी देगी? इस तरह वो लोगों के सामने परमेश्वर के गुण को प्रकट करने में असफल रहा और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा के देश में जाने ना दिया। उनका इतिहास बहुत वर्षों तक मौखिक इतिहास था। उन्होंने बचपन में अपनी माताओं से कहानियां सुनकर अपना इतिहास सीखा था। बीते काल की कहानियां उनके बीच में परमेश्वर के कार्य आदि माताएं बचपन से ही उनके कानों में फुसफुसाने लगती थी। जब वे मां की गोद में ही होते थे, वे कहती थी, प्रभु परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर है। शीघ्र ही वे परमेश्वर के कार्यों को दोहराने लगती। इस तरह वे दूसरों के आगे उन बातों को मौखिक तौर पर सुनाते जो परमेश्वर का छुटकारा, उसकी शक्ति और उसके कार्यों की चर्चा होती थी, और वो मिस्र में बंदवाई की कहानी भी बताते थे, तथा यूसुफ की मृत्यु के बाद फिरौन, जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसकी कहानी सुनाते कि कैसे उनके पूर्वज फिरौन के द्वारा दासत्व में डाले गए, कैसे उसने पैदा होने वाले लड़कों को मार डालने की आज्ञा दी गई थी, और भयानक निर्दयी दासत्व गुलामी। तब परमेश्वर ने एक नेता नियुक्त किया जिसका नाम मूसा था, जो परमेश्वर का जन था। परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा को मिस्र भेजा। परमेश्वर मूसा के द्वारा मिस्र पर महामारियां लाया, और वे अपनी संतानों को ये सब सुनाया करते थे, और ये भी कि कैसे एक मनुष्य जो परमेश्वर की समानता में था, उसे परमेश्वर ने प्रयोग किया। परंतु फिर उनकी आवाज कड़ी हो जाती जब वे अपनी संतानों को बताते, परंतु मूसा प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं जा सका, क्योंकि उसने परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं किया। आज्ञाकारिता का मूल्य सब चीजों के ऊपर उनके मनों में जलने लगा, क्योंकि मूसा परमेश्वर का जन बड़ा प्रतिष्ठित और अनुग्रहित था, एक ऐसा मनुष्य जिसके समान कोई और नहीं था, जिससे परमेश्वर सीधे बात करता था। तो भी मूसा को जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा से वंचित किया गया। वे प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सका, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा न मानी। अपने लोगों की खातिर मूसा प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सका। भजन 106 पद 33। क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, उन्होंने उसकी आत्मा को दुख दिया था। भजन 106 पद 33 से लेकर 37। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा, जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनको उन्होंने सत्यनाश ना किया, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए, और उनके व्यवहारों को सीख लिया, और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, और वे उनके लिए फंदा बन गई। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। उन्होंने बाल देवता के आराधकों की विधि अपनाई, जो अपने बालकों को बलि चढ़ाते। बाल लोहे और पत्थर के देवता, जिनके हाथ आगे की ओर फैले रहते हैं। आप संग्रहालयों में बाल की मूर्तियां देख सकते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां जो पुरातत्व विभाग ने खोजी हैं। वे क्या करते थे? इन्हें आग में डालते थे जब तक लोहा लाल होकर धधकने न लगता, और तब वे अपने बच्चों को लाल धधकते देवताओं की खुली बाहों में डाल देते और बलि कर देते थे। और जब बालक दर से कह रहा था, तब वे नाचते और चिल्लाते, ताकि उसकी दर्द भरी चिल्लाहट उन तक न पहुंचे। ये मूर्ति पूजकों की रीतियां थी, इसलिए परमेश्वर ने लोगों को देश से बाहर कर दिया और उन्हें नष्ट करने की आज्ञा दी, क्योंकि उनकी विधियां बहुत भ्रष्ट थी। उन्होंने आज्ञा ना मानी, और जैसा परमेश्वर जानता था वैसा ही हुआ। वे लोग उन मूर्ति पूजकों का अनुसरण करने लगे, व्यभिचार, आराधना की भयानक और बुरी विधियां। भजन 106 पद 38। और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया, इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया। परमेश्वर कहता है, उन्होंने अपने बेटे बेटियों को बलि करके शैतान को चढ़ाया। दूसरे शब्दों में, मूर्ति पूजा के पीछे शैतान की पूजा थी। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 20 पद, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। बाइबल सिखाती है कि जो गलत आराधना करते हैं वास्तव में शैतान की आराधना करते हैं, और शैतान सारे संसार की धार्मिक गतिविधियों का संचालन करता है, परंतु शैतान मसीहों का संचालन नहीं करता है। भजन संहिता 106 पद 39 से लेकर 48 तक। और वे अपने अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की, उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उनके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तक उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया, और जो उन्हें बंधुए करके ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादि काल से अनंत काल तक धन्य है, और सारी प्रजा कहे आमीन, या की स्तुति करो। देखिए फिर से आमीन। ये महिमा गान हमें भजन संहिता की चौथे भाग के अंत में लाता है, और भजन 107 से हम पांचवें भाग में जाते हैं। इस पुस्तक का अंत भजन 150 में होता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम परमेश्वर की दया, प्यार, बुद्धि और ताकत की महानता को ना भूलें। हम उसकी उपस्थिति में विवेक के साथ चले। काश हम उसके कामों और प्रेम पर ध्यान देने वाले बन जाएं। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे और शक्ति दे। यीशु के नाम में आमीन।